हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मनस्वी पूरी तरह से उसकी बातों में फंस चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ वो पूरी तरह से सीरियस थी और वो इन सब के बारे में नहीं सोच रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो अनय की सारी इनसिक्योरिटीज़ और उसकी सारी कंप्लेंट्स दूर करके रहेगी। अनय ने भी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, अगर साबित करना चाहती हो तो बताओ, अभी के अभी बताओ मुझे, तुमने विराज को कहाँ पर छुपा कर रखा है और क्यों, आखिर क्या चाहती हो तुम? अनय का ये सवाल सुनकर मनस्वी सोच में पड़ गई और उसकी पकड़ अनय के हाथ पर ढीली हो गई। ऐसा नहीं था कि वो उसे इस बारे में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनय के दिमाग में ये चल रहा होगा और वो उससे सीधा यही सवाल पूछ लेगा। अनय ने जैसे ही मनस्वी को इस तरह से सोचते हुए देखा तो वो फिर से उसे ताना मारते हुए तुरंत ही बीच में बोला, बस निकल गई सारी हैकड़ी, सारा एटीट्यूड, बातें ही करो तुम और कुछ तुमसे होगा ही नहीं। इतना बोलकर अनय ने झटक कर उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और फिर से वॉशरूम की तरफ ही बढ़ गया। वो दरवाज़ा खोलकर बस अंदर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से मनस्वी की एकदम सीरियस आवाज़ उसके कानों में पड़ी, रुको अनय, मैं तुम्हें बता नहीं बल्कि दिखा सकती हूँ, मेरे साथ वहाँ चलोगे जहाँ पर विराज है? मनस्वी ने एकदम से ये बात कही तो पहले अनय को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि उसने ऐसा कुछ सुना है, इसलिए वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने, फिर से बोलना जरा एक बार। अनय ने एकदम शॉक्ड होने की एक्टिंग करते हुए कहा। उसके इस तरह बोलने पर मनस्वी भी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, बस इतनी ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वही कहा जो तुमने सुना। मुझे तुम पर भरोसा है अनय, और तुम पर मैं किसी भी चीज़ को लेकर भरोसा कर सकती हूँ, तो फिर विराज कौन सा कोई स्पेशल है, वो तो खुद ही एक मुजरम है और मैं उसे बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहती। जो कुछ भी मैंने कल तुम्हारे दोस्त आदित्य के सामने कहा था वो सब कुछ बिल्कुल सच है, मैं भी उसे सज़ा दिलाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी माँ ने मुझसे रिक्वेस्ट की और वैसे भी तुम्हारा दोस्त उसे काफ़ी टॉर्चर कर चुका है, तो हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम उसे आउट ऑफ कंट्री भेज देंगे, ऐसे में वो उनकी लाइफ से भी दूर चला जाएगा और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मनस्वी की ये बातें सुनकर अनय थोड़ा सा सोच में पड़ गया, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि आदित्य फिर से उसे किडनैप करे और इन सब चक्कर में पड़े, क्योंकि एक बार तो वो बच गया था, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि हर बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि वो पुलिस और बाकी मीडिया से बच जाए विराज के साथ ऐसा करके। हाँ, विराज ने जो किया वो भी सही नहीं था अनय की नज़र में, लेकिन फिर भी एक गलत को सही करने के लिए और भी ज़्यादा गलत तो नहीं कर सकते हैं ना, और अनय और मनस्वी दोनों ही आदित्य को वो सब नहीं करने देना चाहते थे। वो सुनैना के प्यार में पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था और हाथ धोकर विराज के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन किसी को तो समझदारी दिखानी होगी, इसलिए इन सब के बारे में सोचते हुए अनय ने कहा, ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में चलते हैं। तो मुझे विराज के पास लेकर जाने वाली हो ना, चलो थोड़ी बातें तो मुझे भी करनी है, उसे बहुत कुछ समझाना है। अनय ने इतना कहा और फिर सीधा वॉशरूम की तरफ ही बढ़ गया। उसके अंदर जाते ही मनस्वी ने अपने मन में सोचा कि अब अनय को उस पर पूरी तरह से भरोसा हो जाएगा तो उनका रिश्ता भी एक कदम आगे बढ़ेगा। इसके बाद मनस्वी को याद आया कि किस तरह पिछली रात को वो दोनों इतने करीब आ गए थे, उनके वो किस और फिर एक दूसरे के साथ कदल करके सोना, शायद उनकी मैरिड लाइफ में वो सब मोमेंट पहली बार ही थे जब वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे। वो सब सोचते हुए मनस्वी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई जो कि उसके चेहरे पर बहुत ही कम देखने को मिलती थी। दूसरी तरफ आदित्य का विला, लगभग दोपहर हो चुकी थी और आदित्य अब तक सुनैना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर घर वापस भी ले आया था, क्योंकि वो कल से ही इस बारे में कंप्लेन कर रही थी कि वो हॉस्पिटल में बहुत ही अनईजी फील कर रही है और उसे जल्दी से जल्दी घर वापस जाना है। और आदित्य के लिए तो सबसे ज़्यादा सुनैना का कम्फर्ट ही मायने रखता था और उसकी हेल्थ भी, साथ ही जैसा भी वो चाहती थी वो सब कुछ करने को रेडी रहता था, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से बात करके उसे घर लेकर आ गया। साथ ही उसने डॉक्टर से बात कर रखी थी कि कभी भी उसे ज़रूरत पड़े तो इस बार उसने सुनैना को हॉस्पिटल लेकर जाने के बजाय डॉक्टर को ही घर पर बुलाने का प्लान करके रखा हुआ था, और उसके मेडिकल और हेल्थ से जुड़ी हुई सारी डिटेल का जिम्मा उसने रवि को दे रखा था, और इस वक्त रवि भी उनके साथ वहाँ पर आया हुआ था। सुनैना के सिर की चोट का बैंडेज अब पहले से काफ़ी छोटा हो गया था और सिर्फ बैक साइड पर ही चोट भी काफ़ी हल्की सी ही बची थी, लेकिन आदित्य को डॉक्टर ने जो बताया उसके बाद उसका कंसर्न सुनैना की ऊपरी नहीं बल्कि अंदरूनी चोट थी, और वो हमेशा इस बारे में सोचकर ही घबराया हुआ था कि पता नहीं कब सुनैना उसे या फिर उनके साथ बीते हुए दिन भूल जाए। उसके मन में ये सब और बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन फिर भी वो सुनैना के सामने सिर्फ स्माइल कर रहा था क्योंकि वो उसे कोई टेंशन नहीं लेना चाहता था। इन सब थॉट्स के बीच आदित्य रवि के साथ सुनैना को अपने घर लेकर आया। घर के अंदर आते ही सिर्फ स्वीटी और गीता दी वहां पर थीं। उन दोनों ने ही सुनैना को पकड़ा और सुनैना भी इतने टाइम के बाद उन सबको देखकर काफी खुश हुई, इसलिए वो तुरंत कमरे में नहीं गई और वहां पर हॉल में ही बैठ गई। वो घर आकर काफी ज्यादा बेहतर महसूस कर रही थी और खुश होते हुए अपने आसपास चारों तरफ इस तरह से देख रही थी जैसे कि पता नहीं कितने दिनों के बाद आज वो घर वापस लौटी हो। उसे ऐसे चारों तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जब आदित्य ने उसे नोटिस किया तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तभी स्वीटी ने सुनैना के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछा, भाभी अब तबीयत कैसी है आपकी, और आप मुझे तो जानती हो ना।
तबीयत तो ठीक है अब मेरी, और तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो स्वीटी, कोई मजाक है क्या ये, तुम्हें भला क्यों नहीं पहचानूंगी मैं, सुनैना उसकी बात पर कन्फ्यूजन से थोड़ा हंसते हुए बोली। सुनैना की बात से स्वीटी भी काफी कन्फ्यूज हो गई और कन्फ्यूजन से ही उसने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने पूरी बात किसी को भी नहीं बताई थी, जो कुछ भी बात हुई वो डॉक्टर और आदित्य के बीच में ही थी, इसीलिए स्वीटी को कुछ भी नहीं पता था और उसने अनजाने में ही सुनैना से ये सवाल कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ सुनैना को यही लग रहा था कि स्वीटी उससे कोई बचकाना मजाक कर रही है, इसलिए उसने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और तभी आदित्य उन दोनों के बीच बोला, हाँ स्वीटी ये कोई वक्त है क्या मजाक करने का अपनी भाभी से, अभी अभी वो हॉस्पिटल से आई है ना, और तुम्हें क्यों भूल जाएगी भला वो। आदित्य की बात संभालने वाली बातों को सुनकर स्वीटी कुछ तो समझ गई और वो भी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सा माहौल हल्का कर रही थी, सब काफी सीरियस है ना भाभी की इंजरी और फिर हॉस्पिटल से वापस लौटे हैं तो बस। उसकी ये बात सुनकर सुनैना भी हंसते हुए बोली, पगली कहीं की, वैसे कोई बात नहीं तुम इतना मजाक तो कर ही सकती हो, आखिर मैं भाभी हूँ तुम्हारी। उसके बाद सुनैना स्वीटी आदित्य रवि और गीता के साथ काफी देर वहां पर हॉल में बैठकर उनसे कुछ ना कुछ बातें करती रही।
आदित्य इस बीच बार बार उसे रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कह रहा था, लेकिन सुनैना को वहां पर सबके साथ अच्छा लग रहा था। रेस्ट के अलावा आदित्य उसके साथ अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था, साथ ही वो ये भी नहीं चाहता था कि सुनैना को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सबके सामने हो, और वो उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके भी रखना चाहता था। आदित्य की इतनी बार रूम में चलने के लिए बोलने पर भी सुनैना वहां से नहीं उठी तो आदित्य ही फ्रस्ट्रेशन में वहां से उठकर खड़ा हो गया और बोला, वहां हॉस्पिटल में तो बड़ा बोल रही थी कि तुम मेरे आसपास रहोगी, और घर जाना है जहां सिर्फ हम दोनों रहते हैं, और अब क्या है पूरी पंचायत लगाकर बैठी हुई हो यहां। आदित्य ने उन सभी के सामने ये सारी बातें बोली क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके सामने आदित्य कुछ भी बोलने में डरे, क्योंकि वो तो उन सबका ही बॉस और बड़ा भाई था। लेकिन ये सब सुनकर सुनैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फील करने लगी, और उसने आदित्य के हाथ पर मारते हुए कहा, क्या है आदि, अभी थोड़ी देर ही तो बैठी हूँ यहाँ सबके साथ, फिर तो हम दोनों ही होंगे ना, सिर्फ सब अपने अपने काम पर चले जाएंगे ना, और ऐसे मुझे भी अच्छा लग रहा है। सुनैना की बात सुनकर आदित्य ने कहा, अच्छा ठीक है फिर तुम रुको, मैं बस चेंज करके आता हूँ, और वैसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप में से कोई भी मुझे आवाज़ लगा देना, और ध्यान रखना इसका। सभी को ऐसे इंस्ट्रक्शंस देकर आदित्य वहाँ से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आदित्य वहाँ से चला गया लेकिन सुनैना उसकी तरफ ही देख रही थी, उसे लग रहा था कि शायद आदित्य उससे नाराज होकर वहाँ से गया है, इसलिए वो थोड़ी टेंशन में भी थी। और स्वीटी ने जब ये नोटिस किया तो वो उसे चिढ़ाते हुए बोली, अरे भाभी चली जाती ना अब भी भाई के साथ, देखो उन्हें अकेले ही जाना पड़ा और अब आपका भी यहाँ मन नहीं लग रहा है। इतना बोलकर वो रवि और गीता की तरफ देखते हुए हंसने लगी तो वो दोनों भी हल्का सा मुस्कुरा दिए। स्वीटी की ये बात सुनकर सुनैना थोड़ा सा झेंप गई और अटकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सच में तुम लोगों के साथ अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों बाद हम लोग ऐसे एक साथ बैठे हैं, है ना दी। तभी उसने गीता की तरफ देखते हुए जानबूझकर ये पूछा तो गीता ने भी बस सहमति में अपना सिर हिला दिया। दूसरी तरफ अक्षत का बंगला, नैना की लेटेस्ट शूट हुई मूवी का आज एक प्रमोशनल इवेंट होना था, क्योंकि शूटिंग खत्म हो गई थी और प्रमोशन शुरू हो गए थे। आज पहला ही प्रमोशनल इवेंट था जिसमें विवान और नैना दोनों का ही जाना काफी जरूरी था, क्योंकि मूवी में उन दोनों का काफी इंपॉर्टेंट रोल था और वो दोनों सेकेंड लीड कपल थे। लेकिन इस प्रमोशनल इवेंट पर जाने से पहले नैना इस बारे में अक्षत से बात करना और उसे बताना चाहती थी, क्योंकि अक्षत इस फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था और उसने तो न जाने कितने ही ऐसे प्रमोशनल इवेंट अटेंड किए हुए थे, इसलिए वो सोच रही थी कि अगर इस बारे में उसकी अक्षत से कोई बात हो जाती तो उसकी और विवान दोनों की काफी हेल्प हो जाती। क्रमशः